हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 11, 12, 13 एंड 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्कीनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तथा ग्रहो न परः। नारिविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। व्रजे वसन्तं नवनीतशोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम्। ചോരാഖ്യകണ്യം പുരുഷം നമാമി ശ്രീകൃഷ്ണശ്യാമം മനസാ സ്മരാമി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതം ഗദാധാരം ശിവാസദി കൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാപുരാണ കീ ജയ ഹോ. പഹല സ്കന്ധ 13വാ അധ്യായ ജിസ്കാ ശീർഷക് ഹൈ ധൃതരാഷ്ട്ര ദ്വാരാ ഗൃഹത്യാഗ. जैसा कि हमने पढ़ा, विदुर जी मैत्रेय मुनि से भेंट करने के उपरांत हस्तिनापुर में आए हैं और अत्यंत ही भव्य स्वागत किया उनका युधिष्ठिर महाराज ने. और उसके उपरांत जब वो थोड़ा सा आराम कर लिया उन्होंने, उसके बाद विदुर जी अब उनसे बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं जो कि सब सुन रहे हैं. तो क्या क्या पूछा उन्होंने, सबसे पहले तो ये कहा, चाचा जी अब इतना समय हमसे दूर थे, क्या आपको हमारी याद आई थी? क्या आपको याद आया था कि हमारे भतीजे हैं जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह, जिस प्रकार पंछी अपने अंडों को संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उसी प्रकार आपने हमारी हर समय रक्षा की है, क्या हमारी आपको कभी याद आई थी? दूसरा बोले, चाचा जी आप इतने समय तक इस तरह से तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर आपने खाया पिया क्या? आप अपनी जीविका को कैसे चला रहे थे? फिर कहा कि आप जैसे भक्त तो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं. तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाप्रीत्वा. आपके हृदय में तो साक्षात भगवान निवास करते हैं. वास्तव में तीर्थों का भी तब सौभाग्य उदय होता है जिस समय आप जैसे शुद्ध भक्त तीर्थों के दर्शन करने जाते हैं. तीर्थों का ही कल्याण होता है जब आप जैसे शुद्ध भक्त तीर्थों में घूमने जाते हैं. तो इतना कहने के बाद अब युधिष्ठिर महाराज अंतिम बात पूछ रहे हैं. और जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति होता है, उसके हृदय का जिस साइड पर आकर्षण होता है ना, जिस चीज में सबसे ज्यादा आपका आकर्षण होता है, आपकी आसक्ति होती है ना, वो चीज ना चाहते हुए भी मुख से निकल ही आती है, है ना. हम कितना ही अपने प्रेम को छुपाएं, परंतु प्रेम नहीं छुप सकता कि कोई जीव किससे प्रेम करता है. उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का वास्तव में कम्प्लीट पूरा का पूरा समर्पण, पूरा का पूरा भाव, पूरा का पूरा आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में था. भले वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके मुख से स्वतः कृष्ण के विषय में बात, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण यहाँ से गए हैं द्वारिका, और विदुर का तो कितना घूम रहे होंगे, हर जगह पे जा रहे थे, तो अवश्य द्वारिका भी गए होंगे, वहां पर कृष्ण से मिले होंगे. तो मैं कृष्ण के विषय में तो पूछूं कि कृष्ण कैसे थे, सब कैसे थे, यदुवंशी सुख से तो थे. तो उनके विषय में स्वतः उनके विषय में पूछने लगे. और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अपिनः सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वायदवः सपुर्यं सुखमासते अपिनः सुहृदस्तात बांधवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वायदवः सपुर्यं सुखमासते अपिनः सुहृदस्तात बांधवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वायदवः स्वपुर्यं सुखमासते अपि नः सुहृदस्तात। हे तात, तात कहते हैं चाचा जी को, क्योंकि विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडव के भ्राता श्री थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं हे चाचा जी, अपि नः सुहृदस, जो हमारे बहुत ज्यादा शुभ चिंतक हैं, जो हमारे हितेशी हैं, बांधवा, जो हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, और कृष्ण देवता, और कृष्ण को ही सदैव पूछते रहते हैं, कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे दृष्टा श्रुता वा यदवा, ऐसे यदु यादव जो हैं, उनको आपने देखा क्या? आप अपनी यात्रा में वहां पर गए थे द्वारिका, और वहां पर जो हमारे बहुत हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, जो सदैव कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे यादवों से आप मिले, या आपने उनके विषय में सुना तो होगा ना, किसी मतलब आप इतने जगहों पे गए तो किसी ने आपको उनके विषय में बताया होगा। क्या स्वपुर्याम सुखम आसते, क्या वो अपने स्वपुर्याम, स्व मतलब अपने, पुर्याम मतलब अपने अपने घरों में, सुखम आसते, अपने अपने घरों में वो सब सुखी तो है ना, यादवों को कोई कष्ट तो नहीं है ना, क्योंकि यादवों को दुखी देखा नहीं जा सकता, वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, तो मैं बहुत इच्छा है उनके विषय में आप हमें बताइए। अनुवाद देखिए, हे चाचा, आप द्वारिका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना तो होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द है कृष्ण देवता, महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, जो यादव तथा पांडव भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में सदा मग्न रहते थे, वे सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सकें, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे, अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से निमग्न रहता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर त्यागना आवश्यक नहीं है। वास्तव में आपकी आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में कृष्ण कितना बसे हुए हैं, इससे आपकी भक्ति व्यक्त हो रही है। विदुर जी भले ही घर को त्याग कर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अर्जुन भीम युधिष्ठिर महाराज ये जो राज्य में बैठे हुए थे वो अब भगवान से उतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो भी, किंतु सारे पांडव यादव सदैव कृष्ण के विचार में ही डूबे रहते थे, भले वो युद्ध भूमि में हो, भले वो हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर में हो, अतएव उनकी शुद्ध गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, इसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से निमग्न रहना होता है, अर्थात यह जानना कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर। वास्तव में भक्तों, भले ही कृष्ण के विचारों में किसी भी तरह से आप डूबे रहते हो, अनुकूल स्थिति में या प्रतिकूल स्थिति में, आपका उद्धार तो होगा ही, परंतु प्रतिकूल स्थिति यानी भगवान को अपना शत्रु समझकर इस तरह से जिस प्रकार शिशुपाल जरासन इत्यादि भगवान के विचारों में डूबे रहते थे, ये कोई आपकी उन्नति के लिए अनुकूल नहीं है। यदि वास्तव में हम अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य चाहते हैं तो कृष्ण को अपना सुहृद मानना है, कृष्ण को ही अपना प्रिय मानना है, कृष्ण को ही अपना शुभचिंतक मानना है और इसी तरह अनुकूल है न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, जो कृष्ण को पसंद है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही शुद्ध भक्ति है। और यदि हम इस भक्ति के स्तर पर आएंगे तभी ही हम अपने जीवन को अपने मनुष्य देह को सार्थक कर सकेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु वे भिन्न प्रकार से निमग्न रहते हैं या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे, वो भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, मानते थे सदैव सोचते थे उसके विषय में परंतु शक्तिशाली मनुष्य मानते थे, अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्त का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त होता है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी द्वारिका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में ना पूछते। अतएव युधिष्ठिर महाराज भी विश्व के राज्य के मामले में लगे रहकर भी विदुर के समान ही भक्ति पद को प्राप्त थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के विषय में बता रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो लेकिन साथ साथ में आपका पूरा मन जो है वो कृष्ण में लगा हुआ है। हृदय से आप कृष्ण को याद कर रहे हो, मन से आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, तो यही भक्ति है। सदैव हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए जो आचार्यों ने हमें दिए हैं, लेकिन साथ साथ में अपने नियत कर्म भी करने चाहिए। अपने नियत कर्मों को करते हुए हमें सदैव भगवान को याद करना चाहिए। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब में सबसे जो बेस्ट जो सबसे ज्यादा उच्च कोटि का रूल है वो क्या है, स्मर्तस्य सततम विष्णु विस्मर्तस्य जातुचित सर्व विधि निषेध है। जितने भी विधि और निषेध हैं इस एक उसूल के किंकर हैं कि क्या, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम। हमें हर समय भगवान को ही स्मरण करना चाहिए, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। वो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वे भले ही राज्य के मामले में लगे रहे हैं फिर भी विदुर के समान ही शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त हैं। आगे श्री सुख गोस्वामी कहते हैं इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनायदु कुलक्षयम् इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनायदु कुलक्षयम् इत्युक्तो। इस प्रकार जब उक्तो मतलब पूछा, उनसे ये सारी चीजें पूछी धर्मराज युधिष्ठिर ने, सर्वम तत् समवर्णयत। सर्वम मतलब सारी की सारी, ये सब कुछ तथ्य सम ठीक से वर्णन किया। किसने, विदुर जी ने सब कुछ सही सही बताया, सारी चीजें बता रहे थे कि हाँ आप लोगों को मैं बहुत बहुत याद करता था, भले मैं वहां पर था लेकिन फिर भी मुझे रहता था कि अभी वहां पर हस्तिनापुर में युद्ध हो रहा होगा, और इसके अतिरिक्त और भी जो पूछा जैसे कि वहां पर मैं यात्रा में गया था तो कैसे अपना जीवन बसर कैसे कर रहा था वो सब बताया। परंतु यथानुभूतम क्रमशो सीरीज में, क्रमशो मतलब सारा लाइन से बता रहे थे, एक के बाद एक करके वो बता रहे थे जैसा उसने अनुभव किया था उसी इसी तरह से वो बता रहे थे। परंतु विना यदु कुलक्षयम, एक बात नहीं, विना मतलब एक चीज नहीं बताई उन्होंने, एक चीज नहीं बोली या वो बोल नहीं सकी क्या? यदु कुलक्षयम, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया था कि विदुर जी को उद्धव ने बता दिया था कि अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पे नहीं रहे, लेकिन वो चीज अभी तक युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कुछ भी हो जाता था तो कोई ना फ्रेंड न्यूज में हम लोगों को मैसेज कर देता या फिर फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता, पता ही नहीं चलता था। बहुत दूर दूर ना, हस्तिनापुर बहुत दूर था, द्वारिका बहुत दूर था, तो खबर ही नहीं पड़ी किसी को कि ऐसा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज को बताया ही नहीं विदुर जी ने। विना यदुकुल क्षयम, उसने यदुकुल के क्षय होने की बात नहीं बताई। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही वो आगे बताते हैं सुत गोस्वामी। नन्व प्रियं दुर्विशहं नृणां स्वयं उपस्थितम् नावीदयत् स करुणो दुखितान् द्रष्टुमक्ष्मः। नन्व प्रियं दुर्विशहं नृणां स्वयं उपस्थितम् नावीदयत् स करुणो दुखितान् द्रष्टुमक्ष्मः। नन्व प्रियं दुर्विशहं नृणां स्वयं उपस्थितं नावीदयत् स करुणो दुखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं, नन् मतलब निश्चय ही, अप्रियं यानी कि किसी को जो चीज बहुत ही ज्यादा अप्रिय लगे और दुर्विषम असह्य लगे, अगर हमें पता है कि मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो उसके लिए असह्य हो जाएगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसको बहुत दुख होगा। निर्णाम स्वयं उपस्थितम, निर्णाम मतलब मानव जाति में अपने ढंग से उपस्थितम प्राकृत, यानी कि अब इस संसार में जीवों को तो वैसे ही दुख मिलता रहता है, देखा जाए तो हर संसार में हर एक जीव दुखी है। नृणां स्वयं उपस्थितम, दुख तो सबके लिए स्वतः आता रहता है, वैसे ही दुखी है, तो हम किसी को कोई दुखदायक बात सुनाकर और अधिक दुखी क्यों करते, है ना? लोग अपने कष्टों से पहले ही इतने ज्यादा दुखी हैं, फिर भी क्या करते हैं लोग, और भी उनको ज्यादा दुखी करते हैं, आके उनको और भी ऐसी अप्रिय बातें बताते हैं, ऐसी दुखदायक बातें बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें शास्त्र सिखाता है कि किसी को कोई ऐसी बात आप क्यों बता रहे हो जिससे उसको दुख हो रहा है, नहीं पता उसको, रहने तो समय आएगा उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ विदुर जी से जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि आप तो द्वारिका भी गए होगे, तो वहां पर सारे दृष्टा श्रुत्वा वा यदव स्वभूर्यम सुखम आसते, सारे यादव अपने अपने घरों में सुखी थे, लेकिन फिर भी विना यदुकुल क्षयम, उन्होंने यदुकुल का क्षय के विषय में नहीं बताया। क्यों? नावे दयत स करुणो, क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा थी, दया थी, बहुत प्रेम करते थे युधिष्ठिर महाराज से, वे उनका दुख नहीं देख सकते थे, इसीलिए नावे दयत उन्होंने नहीं बताया। दुखितान द्रष्टुम अक्षमः, वो क्योंकि उनको दुखितान दुखी जनों को द्रष्टुम देखने के लिए अक्षमः, वो उनको दुखी देखने के लिए समर्थ नहीं थे, वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चुप रहा, इस मामले में कुछ भी नहीं बताया। अनुवाद, दयालु महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती रहती हैं। तो
यहाँ पर विदुर महाराज देख रहे थे कि अगर मैंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि कृष्ण अब इस संसार में नहीं है, तो क्योंकि वो खाली कृष्ण से प्रेम करते हैं, इस संसार में वो कृष्ण के ही सहारे जी रहे हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और कौन है बलराम का। अगर उनको पता चल गया कि कृष्ण नहीं रहे, यदुवंशी नहीं रहे, फिर क्या ये बात युधिष्ठिर महाराज सह सकेंगे? याद है आपको जब कृष्ण हस्तिनापुर से खाली जा रहे थे, हस्तिनापुर से लेकर भगवान द्वारिका जा रहे थे, वो भी युधिष्ठिर महाराज सह नहीं सक रहे थे, बार बार मूर्छित होकर गिर जाते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतः इसका विज्ञापन करके इससे तूल नहीं रहना चाहिए। एक तो पहले से कष्ट आया है जीव के ऊपर, और भी उसको विज्ञापन करा जाए, और भी ज्यादा पब्लिसिटी करके दूसरे सामने वाले को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। और विदुर जैसे दयालु व्यक्ति के लिए विशेषतः प्रिय पांडवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए वे जानबूझकर कतराते रहे। उसको खबर थी, विदुर जी को पता था कि अगर मेरे मुख से एक बार निकल गया कि अब कृष्ण नहीं रहा, तो फिर ये हो सकता है युधिष्ठिर महाराज के प्राण ही निकल जाए, क्योंकि जो कृष्ण से थोड़ी सी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, उसके लिए कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हैं तब भी वो दुखी होते हैं, नहीं इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो भला इतना भगवान जब इस संसार से चले गए हैं, अपनी लीला को विराम दे दिया है, तो फिर वो कैसे इसलिए विदुर जी ने उनको ये बात बताई नहीं और जानबूझकर कतराते रहे, मतलब वो टाल देते थे, इस बारे में बात ही नहीं की। और आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कंचित काल मथावासी सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। कंचित कालम अथावासित, कंचित काल मतलब कुछ काल तक, कुछ समय तक, अथा आवासित इस प्रकार से वो रहे, सत्कृत मतलब सम्मानित हुए, बहुत ज्यादा देववत सुखम, युधिष्ठिर महाराज ने उनका देवों की तरह, देवताओं की तरह सम्मान किया, बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार भगवान की सेवा की जाती है उनका सम्मान करते थे। ये वही विदुर जी हैं जिनको वैश्य शूद्रानी का पुत्र कहकर उस हस्तिनापुर की सभा से अपमानित करके भेज दिया गया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं कि शुद्ध भक्तों का किस प्रकार से आदर किया जाता है। तो देववत सुखम, वो देव युक्त मतलब देवताओं के समान उनको सुख देते थे, सुविधाएं देते थे, सम्मान देते थे, लेकिन विदुर जी को इन सब में आसक्ति नहीं थी। वो ये सोचकर यहाँ पर नहीं आए थे कि यहाँ पर मैं हस्तिनापुर में जाऊंगा, अब तो पांडव राज्य कर रहे हैं, अब तो मुझे बहुत सम्मान देंगे, मुझे बहुत आदर देंगे, मुझे बहुत सुविधाएं देंगे, सुख देंगे, ये सब यहाँ पर करने के लिए वो नहीं आए थे। उनको इन समस्त सुखों में, सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, क्योंकि वो तो इन सबका कब का त्याग कर चुके थे। तो यहाँ पर क्यों आए थे, तो उसके विषय में बता रहे हैं सुत गोस्वामी, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, उनका एक ही कार्य था, भ्रातुर्ज्येष्ठस्य उनके जो बड़े भाई हैं, ज्येष्ठ कहते हैं जो बड़े भाई, उनको भ्रातु यानी भाई को श्रेयस्कृत, सिर्फ उनके प्रति अच्छाई, उनका श्रेय करने के लिए, उनके साथ अच्छाई करने के लिए, उनके इस क्योंकि वो अभी तक युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बैठे हुए थे, तो उनको ये बताने के लिए कि ये आपके लिए सही है, जिन पांडवों ने आपके सारे बच्चों की हत्या कर दी, उनके साथ उनके घर में बैठ के आप उनके हाथों के टुकड़ों पे पल रहे हो, अभी तक आपका राज्य से मोह खत्म नहीं हुआ है, आप वानप्रस्थ ले लो, आप संन्यास ले लो, अभी तो तुम्हारी उम्र हो गई, अभी तक राज्य भोग में पड़े हुए हो, तो अपने भाई बड़े भाई का श्रेय करने के लिए वो बहुत सारा उन्होंने उपदेश दिया उनको। और सर्वेशाम सुखमावहन, इस तरह से जो वो उपदेश दे रहे थे, तो सर्वेशाम वो दे रहे तो खाली अपने बड़े भाई को तो, लेकिन फिर भी सर्वेशाम जितने भी दूसरे थे सब दूसरों को भी सुखम आवहन, बहुत ही सुखी बनाया, यानी कि दूसरों को भी बहुत ही ज्यादा सुख प्रदान किया अपने उपदेशों से, अपने अच्छे बातें जब उन्हें बता रहे थे तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अनुवाद, इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्लोक में बताया सत गोस्वामी, सत्कृतो देववत सुखम, के उनको देवताओं के समान उनका सम्मान किया जाता था विदुर जी का, तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा ही होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के वासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांड में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। संबंध, लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर के से यात्रा कर पाना संभव है, अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वैसे तो दूसरे लोक में जाने के लिए आपको यह शरीर यहीं पर छोड़ना पड़ता है, लेकिन देवता जो है वो यदि किसी जगह पे जाना चाहें या पृथ्वी लोक पे आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी विभूति हैं जो न केवल देवलोक में बल्कि भगवान के वैकुंठ में भी बगैर किसी परमिशन के आ जा सकते हैं। तो जब किसी जीव की आध्यात्मिक संस्कृति बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, बहुत ज्यादा भगवान के अंदर उसकी बुद्धि लग जाती है और भगवान के साथ संबंध बहुत गहरा हो जाता है, तो फिर ऐसा संभव है। हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब तक देवी देवता भी भगवान के वैकुंठ में इस प्रकार से बगैर रोक टोक के नहीं जा सकते हैं जिस तरह से नारद मुनि जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी का बहुत ही सुंदर सत्कार किया जैसा कि देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले से ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। भले ही युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ज्यादा सत्कार किया, सुविधाएं दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदुर महाराज इन्हीं की लालसा से यहाँ पर आए थे। वो यहाँ पर सुख भोगने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव स्वीकार किया था। स्वीकार तो किया, मतलब ऐसे नहीं बोला नहीं भाई ये मैं इस पलंग पे नहीं सो सकता हूँ, मैं ऐसा राजसी भोजन नहीं खा सकता, ऐसे नहीं बोला। स्वीकार तो किया, मगर केवल अपनी युधिष्ठिर महाराज के प्रति अपनी जो कृपा थी, अपना जो प्रेम था, उसके कारण स्वीकार किया, मगर उन चीजों की लालसा नहीं थी उसको। लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य क्या था, उद्देश्य से यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे, भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, केवल अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना, बड़े भाई का श्रेय करना जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट तथा सारे वंशज खो दिए थे, तो भी असहायावस्था के होते हुए भी वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा
आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने चाचा को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र से स्वीकार करना उचित न था, किंतु उन्होंने इसीलिए स्वीकार कर रखा था क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें राज्य की लालसा थी, वो राज्य में सुखपूर्वक रहना चाहते थे, अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो युधिष्ठिर के टुकड़ों पे पल रहे थे। विदुर वहां पर धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं केवल अपना ही उद्धार करूं। समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करना उनका कर्तव्य होता है। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, जिन्हें वास्तविक लक्ष्य का पता होता है, तो उनका उद्धार करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर विदुर जी आए थे। हालांकि विदुर को अब यहाँ पर भौतिक किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं थी, वो तो इतने समय से तपस्या कर रहे थे और अब कृष्ण के चले जाने के बाद हस्तिनापुर में उनका क्या काम। लेकिन फिर भी वो आए थे क्योंकि ये उनका कर्तव्य था कि अपने बड़े भाई का भी उद्धार करें। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब विदुर धृतराष्ट्र को अपने संदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकर्षित हो गए थे और सबों ने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनी। यानी कि वो बता रहे तो धृतराष्ट्र को थे, परंतु सब बहुत ही धैर्य से सुन रहे थे, क्योंकि आध्यात्मिक जो बातें होती हैं बहुत सुहावनी होती हैं। तो यदि कोई थोड़ा सा भी जिसके मन में सुकृति होती है तो उसको अच्छा लगता है बहुत। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है, संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। वैसे तो सारे लोग बताते रहते हैं, है ना, जितने भी लोग होते हैं वो बताते रहते हैं कि भाई जीवन क्षणिक है, मृत्यु आने वाली है, हम क्या सारी जिंदगी खाते पीते, लेकिन उनकी बात हम पर असर नहीं करती। लेकिन जो वास्तव में कोई बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जिसकी तपस्या, जिसका अनुभव बहुत आध्यात्मिक होता है, और ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार का संदेश देता है तो यह बद्ध जीवों की सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। फिर जीव जो है वो वास्तव में सोचते हैं कि हमें भौतिक वस्तुओं को त्याग कर भगवान के श्री चरणों की ओर आकर्षित होना चाहिए। निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि आपको आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करना है, यदि देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना है, तो उसका एक तरीका है कि शुद्ध भक्तों से हमें श्रवण करना चाहिए, और जब हम श्रवण करते हैं तो अवश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और अपने मन को भौतिक विचारों से हटाकर भगवान के चरणों में स्थित कर सकते हैं। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी से श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। अवश्य एक समय आएगा, अवश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। हमें धैर्य से, सदैव ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के वाक्यों को श्रवण करते रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरि बोल।